आतंकवाद की राजनीति, सत्ता, सहानुभूति और कानून का चयनात्मक प्रयोग। आधुनिक राजनीतिक विमर्श में आतंकवाद से अधिक वजनदार या अस्पष्ट शब्द बहुत कम हैं। यह एक साथ नैतिक निंदा, कानूनी वर्गीकरण और हिंसा या दमन का औचित्य है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह एक राजनीतिक हथियार है जिसका प्रयोग चयनात्मक और अक्सर असंगत ढंग से किया जाता है। दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और परिभाषाओं के बावजूद आतंकवाद की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कानूनी परिभाषा आज तक नहीं है, न इसलिए कि यह अवधारणा स्वभाव से अस्पष्ट है, बल्कि इसलिए कि यह लेबल स्वयं सत्ता द्वारा गढ़ा जाता है। इस असंगति के केंद्र में एक खतरनाक दोहरा मापदंड है। गैर राज्य अभिकर्ताओं के कार्यों को आसानी से आतंकवाद कहा जाता है, जबकि राज्य मान्यता प्राप्त देशों द्वारा किए गए कार्यतः समान कार्यों को सैन्य अभियान, प्रतिशोध या सहायक क्षति जैसे शब्दों से स्वच्छ कर दिया जाता है। यह केवल शाब्दिक नहीं है, इससे यह तय होता है कि कौन वैध माना जाएगा, किसकी हिंसा स्वीकार्य होगी और किसके दुख को मान्यता मिलेगी। फिलिस्तीनी संघर्ष इस दोहरे मापदंड का एक स्पष्ट और निरंतर उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब फिलिस्तीनी हिंसा का प्रयोग करते हैं, चाहे कब्जे के खिलाफ, जमीन वापस लेने के लिए या व्यवस्थित मताधिकार हरण के विरोध में, उसे प्रभुत्वशाली शक्तियों द्वारा लगभग हमेशा आतंकवाद कहा जाता है। जब इजरायली सेनाएं असमानुपातिक बल प्रयोग करती हैं, शरणार्थी शिविरों पर बमबारी करती हैं, विदेशों में नेताओं की हत्या करती हैं या बसावटकर्ता पोग्रोम को सक्षम बनाती हैं, तो प्रतिक्रिया को आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा की भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, न कि आतंकवाद की। यह निबंध तर्क देता है कि आतंकवाद का लेबल लगाना मुख्य रूप से कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक है। यह शक्तिशाली राज्यों के हितों और सहानुभूतियों को प्रतिबिंबित करता है, न कि कानूनी मानकों के सुसंगत अनुप्रयोग को। इसके अलावा यह सुझाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समान व्यवहार की फिलिस्तीनी मांग प्रबोधन युग के मूल संघर्ष को प्रतिबिंबित करती है। मनमानी विशेषाधिकारों का खारिज करना और यह आग्रह कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए, व्यक्ति, जनता और राज्य सब पर। यूएनजीए संकल्प 4960 और आतंकवाद की कानूनी परिभाषा। 1994 में अपनाया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 4960 ने आतंकवाद को सार्वभौमिक रूप से परिभाषित करने की कोशिश की। इसके संलग्न घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समाप्त करने के उपायों की निंदा की गई है। अपराधपूर्ण कृत्य, जिनमें नागरिकों के खिलाफ भी शामिल हैं, जिनका इरादा मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाना या बंधक बनाना है, जिनका उद्देश्य सामान्य जनता या व्यक्तियों के किसी समूह या विशेष व्यक्तियों में आतंकी स्थिति पैदा करना, जनसंख्या को डराना या किसी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कोई कार्य करने या न करने के लिए बाध्य करना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि संकल्प अपनी परिभाषा में राज्य और गैर राज्य अभिकर्ताओं में कोई भेद नहीं करता। मापदंड स्पष्ट हैं, नागरिकों के खिलाफ जानबूझकर की गई हिंसा जो डराने, बाध्य करने या राजनीतिक परिणाम प्राप्त करने के लिए की गई हो, वह आतंकवाद है। सिद्धांत रूप में यह किसी भी अभिकर्ता, राज्य या अन्य पर लागू हो सकता है। व्यवहार में, हालांकि, इस संकल्प को राज्य कार्यों पर लगभग कभी लागू नहीं किया गया, भले ही वे परिभाषा को पूरी तरह पूरा करते हों। कारण कानूनी अस्पष्टता नहीं है। कारण शक्तिशाली राज्यों या उनके सहयोगियों को नाम लेकर शर्मिंदा करने की राजनीतिक अनिच्छा है। जब गैर राज्य अभिकर्ता ऐसा करते हैं तो आतंकवाद का लेबल तत्काल और अटल होता है। जब राज्य करते हैं, विशेष रूप से मान्यता प्राप्त, सैन्य रूप से प्रभुत्वशाली या भू राजनीतिक रूप से संरेखित राज्य, तो लेबल स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहता है। राज्य बनाम गैर राज्य अनुप्रयोग में दोहरा मापदंड। इजरायली राज्य सेनाओं द्वारा किए गए अनेक अभियानों, पूर्व राज्य हगाना और इरगुन से लेकर आधुनिक आईडीएफ और मोसाद तक, में नागरिकों को निशाना बनाना, सामूहिक दंड और विदेशों में हत्याएं शामिल रही हैं। यूएनजीए 4960 के सख्त मापदंडों के तहत इनमें से कई कार्य आतंकवाद की परिभाषा में फिट बैठते हैं। खिब्या नरसंहार 1953, 69 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे, घुसपैठ रोकने के लिए दंडात्मक छापे के तहत। गाजा अभियान 2008, 2014, 2021, 2023, 25 हजारों नागरिक मारे गए, संयुक्त राष्ट्र स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी, भोजन और पानी की नाकाबंदी, अक्सर इसे आतंकवाद विरोध के रूप में उचित ठहराया गया, भले ही इसका प्रभाव पूरे आबादी को डराने के समान था। रेथ ऑफ गॉड हत्याएं 1970, यूरोप और मध्य पूर्व में संदिग्ध उग्रवादियों और कुछ मामलों में नागरिकों को मारने के लिए कारबम और मेलबम। बसावटकर्ता हिंसा को सक्षम करना, हुवारा जैसे कस्बों में पोग्रोम से लेकर फिलिस्तीनी किसानों और बच्चों पर व्यवस्थित हमले तक, बसावटकर्ता हिंसा को नियमित रूप से सैन्य संरक्षण या उदासीनता मिलती है, जिससे इसे राजनीति का एक अंग मान्यता मिलती है। इनमें से किसी भी कार्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र भी, कभी आतंकवाद नहीं कहता। इस्तेमाल की जाने वाली भाषा प्रतिशोध, सुरक्षा या सैन्य आवश्यकता की होती है। अधिक से अधिक इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन कहा जाता है, जिन्हें युद्ध अपराध या समानुपातिकता का उल्लंघन माना जाता है, आतंकवाद नहीं। फिलिस्तीनी हिंसा और लेबल की सार्वभौमिकता। इसके विपरीत, फिलिस्तीनी हिंसा, भले ही सैन्य लक्ष्यों पर निर्देशित हो या प्रतिरोध के रूप में प्रस्तुत की जाए, को सार्वभौमिक रूप से आतंकवाद कहा जाता है। दूसरी इंतिफादा के दौरान आत्मघाती बम विस्फोटों से लेकर गाजा से रॉकेट फायर तक, लेबल तत्काल और पूर्ण होता है। यहां तक कि फिलिस्तीनियों द्वारा अहिंसक प्रतिरोध, जैसे बॉयकॉट, डिवेस्टमेंट और सैंक्शंस, BDS आंदोलन, को भी कुछ देशों द्वारा अपराधीकृत या आतंकवादी समर्थन के बराबर किया जाता है। असमानता स्पष्ट है, फिलिस्तीनियों का मूल्यांकन उनके परिणामों से किया जाता है, संदर्भ चाहे जो हो। इजराइल का मूल्यांकन उसके इरादों से किया जाता है, परिणाम चाहे जो हों। मान्यता, सहानुभूति और सत्ता की भूमिका। यह विसंगति एक मूल राजनीतिक तथ्य से उत्पन्न होती है। आतंकवाद का लेबल कानूनी निकायों द्वारा अलग थलग नहीं लगाया जाता, बल्कि शक्तिशाली राज्यों, मीडिया संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा लगाया जाता है, जो रणनीतिक गठजोड़ों और राजनीतिक सहानुभूतियों से प्रभावित होते हैं। राज्य मान्यता वैधता प्रदान करती है। इजराइल एक मान्यता प्राप्त राज्य के रूप में बल प्रयोग का संप्रभु अधिकार रखता है। फिलिस्तीनियों को पूर्ण मान्यता और राज्यत्व के अभाव में अवैध अभिकर्ता माना जाता है, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अधिकारों का हवाला दें, जैसे संकल्प 3743 के तहत कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध का अधिकार। राजनीतिक सहानुभूति मायने रखती है। पश्चिम में इजराइल को लोकतंत्र, क्षेत्रीय सहयोगी, उग्रवाद के खिलाफ किला माना जाता है। इससे एक निहित सद्भावना की धारणा बनती है। फिलिस्तीनियों को इस्लामवाद, तानाशाही या आतंकवाद से जोड़ा जाता है, जिससे दुर्भावना की धारणा बनती है। ये सहानुभूतियां न केवल मीडिया फ्रेमिंग बल्कि कानूनी और कूटनीतिक भाषा को भी आकार देती हैं। सत्ता निर्णय से बचाती है। संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर, मजबूत सैन्य गठजोड़, जैसे अमेरिका के साथ या आर्थिक प्रभाव वाले राज्य शायद ही कभी अंतर्राष्ट्रीय अभियोजन या लेबलिंग के अधीन होते हैं। यही कारण है कि आतंकवाद युद्ध अपराधों की तरह अक्सर केवल कमजोरों द्वारा किए जाने पर ही दंडित होता है। फिलिस्तीनी संघर्ष और प्रबोधन आदर्श। मूल रूप में फिलिस्तीनी मांग केवल भूमि, संप्रभुता या मान्यता की नहीं है, यह कानून के समान अनुप्रयोग की मांग है। यह मांग है कि दूसरों पर लागू होने वाले वही सिद्धांत उन पर भी लागू हों, चाहे प्रतिरोध का अधिकार हो, जीवन का अधिकार हो या न्याय का अधिकार। इस अर्थ में फिलिस्तीनी संघर्ष प्रबोधन युग के मूल संघर्षों को प्रतिबिंबित करता है। जैसे 18वीं सदी के विचारकों ने राजाओं के दैवीय अधिकार को खारिज किया, यह धारणा कि कुछ शासक जन्म या पद के आधार पर कानून से ऊपर हैं, वैसे ही आज फिलिस्तीनी राज्यों की कानूनी जवाबदेही से छूट को खारिज करते हैं। रूसो, मोंटेस्क्यू और कांट जैसे प्रबोधन विचारकों ने तर्क दिया कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए, वरना वह कानून नहीं, अत्याचार है। उन्होंने तर्क दिया कि संप्रभुता जनता के पास है, न कि उन शासकों के पास जो इसे मनमाने ढंग से दावा करते हैं। फिलिस्तीनी भी यही तर्क देते हैं कि राज्यत्व यह तय नहीं करना चाहिए कि किसे मानवीय माना जाए, किसे अपराधी ठहराया जाए या किसके दुख मायने रखते हैं। एक बम विस्फोट को आतंकवाद कहना और दूसरे को सुरक्षा कहना, जबकि साधन और उद्देश्य समान हो, कुलीन तंत्र की तर्क प्रणाली को पुनर्जनन है कि कुछ जीवन पवित्र हैं और अन्य व्ययोग्य, कि कुछ लोगों को प्रतिरोध का अधिकार है और दूसरों को केवल पीड़ा सहने का अधिकार। सुसंगत कानून की मांग, चाहे जिनेवा कन्वेंशंस लागू करना हो, युद्ध अपराधों का अभियोजन हो या आतंकवाद की परिभाषा, केवल न्याय की मांग नहीं बल्कि आधुनिकता स्वयं की मांग है। निष्कर्ष, सार्वभौमिक मानक की ओर। अगर आतंकवाद को राजनीतिक गाली से अधिक एक सार्थक कानूनी श्रेणी बनना है, तो इसे सुसंगत रूप से लागू करना होगा। इसका मतलब है, यह मान्यता कि राज्य अभिकर्ता भी आतंकवाद कर सकते हैं, जैसे गैर राज्य अभिकर्ता कर सकते हैं। यह स्वीकारोक्ति कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नागरिकों को निशाना बनाना आतंकवाद है, चाहे अभिकर्ता का झंडा, धर्म या रणनीतिक मूल्य कुछ भी हो। UNGA 4960 जैसे कानूनी परिभाषाओं को अभिकर्ताओं पर नहीं, कार्यों पर लागू करना। ऐसा न करना केवल अन्याय को बनाए रखता है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून की मूल अवधारणा को कमजोर करता है। यह दुनिया को बताता है कि कानून सार्वभौमिक नहीं बल्कि शक्तिशाली का हथियार है। यह उत्पीड़ितों को बताता है कि उनका एकमात्र अपराध कमजोरी है। कानून के तहत समान अधिकार, समान संरक्षण और समान निर्णय की फिलिस्तीनी पुकार कोई उग्र मांग नहीं है, यह प्रबोधन का सार है और किसी भी सभ्यता का मापदंड जो इसे सम्मान देने का दावा करती है। परिशिष्ट यूएनजीए संकल्प 4960 के सख्त शाब्दिक परिभाषा को पूरा करने वाले घटनाक्रम राज्य या राज्य समर्थित अभिकर्ताओं को सामान्य छूट के बिना लागू किया गया। ए नरसंहार, नागरिकों की बड़ी संख्या में जानबूझकर हत्या करके आतंकित करना और भागने या समर्पण के लिए बाध्य करना। ख्र घटना तारीख अपराधी स्थान हताहत क्यों परिभाषा में फिट बैठती है। डैश 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 ए वन किंग डेविड होटल बम विस्फोट 22 जुलाई 1946 इरगुन ज्वाइलेमी मिनाहिम बेगिन यरूशलम 91 मरे 41 अरब 28 ब्रिटिश 17 यहूदी अन्य ब्रिटिश प्रशासनिक मुख्यालय में नागरिक कर्मचारियों वाले भवन में बम रखा गया ताकि कब्जेदारों को मारकर और अनिवार्य सरकार को फिलिस्तीन छोड़ने के लिए डराया जाए। अटुअल खिसास नरसंहार 18 दिसंबर 1947 पालमा हगाना इलीट यूनिट अल खिसास दलील 10-15 ग्रामीण मारे गए 5-25 सहित सोते परिवारों के घरों पर रात में बमबारी पास की घटना के बदले अरब गांवों को डराने और गृहयुद्ध के दौरान व्यापक आतंक संकेत देने के लिए। A3 बलद अल शेख नरसंहार 31 दिसंबर 1947 पालमा हगाना बलद अल शेख हैफा 60-70 ग्रामीण मारे गए रिफाइनरी हमले के बाद गांव पर प्रतिशोधी हमला घर में अधिकतम वयस्क पुरुषों को मारने के आदेश ताकि डर पैदा हो और अरब प्रतिरोध रोका जाए। A4 सासा नरसंहार 14-15 फरवरी 1948 पालमा हगाना सासा सफेद जिला 60 ग्रामीण मारे गए बच्चे सहित निवासियों के अंदर घरों को उड़ाना दलील गांवों को भागने के लिए डराने हेतु स्पष्ट मॉडल छापा। A5 देयर यासीन नरसंहार 9 अप्रैल 1948 इरगुन और लेही हगाना की मौन सहमति देयर यासीन यरूशलम गलियारा 107-140 ग्रामीण महिलाएं बच्चे बुजुर्ग सहित घर घर व्यवस्थित हत्याएं विकृति शवों का सार्वजनिक प्रदर्शन फिलिस्तीनी आबादी को सामूहिक भागने के लिए डराने हेतु स्पष्ट रूप से डिजाइन किया गया 1948 की निकासी का सीधा ट्रिगर। A6 एनल जैतून नरसंहार 2-3 मई 1948 पालमा हगाना एनल जैतून सफेद 70+ ग्रामीण मारे गए कब्जे के बाद कैदियों और नागरिकों की फांसी ताकि ऑपरेशन यिफ्ता के दौरान सफेद क्षेत्र के आसपास की समुदायों को डराया जाए। A7 अबू शूशा नरसंहार 13-14 मई 1948 गिवती ब्रिगेड हगाना अबू शूशा रामले जिला 60-70 ग्रामीण मारे गए बलात्कार और सामूहिक कब्रों के साथ हमला ताकि लोध रामले विजय के हिस्से के रूप में गांव को खाली और डराया जाए। A8 तंतूरा नरसंहार 22 मई 1948 अलेक्जेंड रोनी ब्रिगेड हगाना तंतूरा हैफा तट 200+ ग्रामीण मारे गए आत्मसमर्पण के बाद युवकों की गोलीबारी और सामूहिक कब्रें ताकि तटीय फिलिस्तीनी भागने को मजबूर हों और हैफा सुरक्षित हो। A9 लियद्दा लोध और रामले निष्कासन नरसंहार 11-14 जुलाई 1948 यिफ्ताख और 8वें आर्मर्ड ब्रिगेड यित्जाक राबिन पालमाक बेन गुरियन के आदेश पर लियद्दा और रामले 250-1700 मारे गए 70,000 को जबरन निर्वासन में भेजा गया अंधाधुंध गोलीबारी मस्जिद नरसंहार लगभग 200 मारे गए और 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी में मौत मार्च ताकि यरूशलम मार्ग के प्रमुख कस्बों को खाली और डराया जाए। A10 एलाबून नरसंहार 30 अक्टूबर 1948 कोलानी ब्रिगेड IDF एलाबून टाइबेरिया जिला 14 ग्रामीण फांसी पर आत्मसमर्पण के बाद हत्याएं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों ने दर्ज किया ताकि लोअर गलील से ईसाई अरबों के निर्वासन को बाध्य किया जाए। A11 हुला नरसंहार 31 अक्टूबर 1948 करमेली ब्रिगेड IDF हुला लेबनानी सीमा 35-58 ग्रामीण मारे गए आत्मसमर्पण के बाद फांसियां कमांडर को थोड़े समय के लिए जेल लेकिन उद्देश्य ऑपरेशन हिराम के दौरान सीमा आबादी को डराना था। A12 अल दवाइमा नरसंहार 29 अक्टूबर 1948 नवासी विन कमांडो बटालियन IDF अल दवाइमा हेब्रोन जिला 82-455 नागरिक अनुमान अलग अलग 3 चरणों में घरों मस्जिद और गुफाओं में निवासियों की हत्या ताकि दक्षिणी मोर्चे पर बचे गांवों को डराया जाए। A13 सफसाफ और सालिहा नरसंहार 29-30 अक्टूबर 1948 सातवें आर्मर्ड ब्रिगेड IDF सफसाफ और सालिहा अपर गलील सफसाफ में 52-70 सालिहा में 60-94 आत्मसमर्पण के बाद फांसियां बलात्कार शव जलाना शरणार्थियों के साथ मस्जिद में विस्फोट ताकि गलील से भागने में तेजी आए। A14 अरब अलमवासी नरसंहार 2 नवंबर 1948 IDF पल इलाबून के पास टाइबेरियास 14 बेदुन मारे गए पुरुषों की गोलीबारी और गांव नष्ट करना ताकि खानाबदोश समूहों को पारंपरिक भूमि छोड़ने के लिए डराया जाए। A15 किबिया नरसंहार 14-15 अक्टूबर 1953 IDF यूनिट 101 और पैराट्रूपर्स एरिल शारन किबिया वेस्ट बैंक तब जॉर्डन 69 ग्रामीण 2/3 महिलाएं और बच्चे निवासियों के अंदर घर और स्कूल डायनामाइट से उड़ाना जॉर्डन सीमा गांवों को डराने के लिए प्रतिशोध। A16 खान यूनिस नरसंहार 3 नवंबर 1956 IDF पल खान यूनिस गाजा पट्टी 275-400 फिलिस्तीनी मारे गए सिनाई कब्जे के दौरान नियंत्रण के लिए घर घर तलाशी के साथ सामूहिक फांसियां और बंधे पुरुषों की कब्रें। A17 कफरकासन नरसंहार 29 अक्टूबर 1956 इजरायली बॉर्डर पुलिस कफरकासन इजराइल 49 अरब नागरिक 23 बच्चे सहित स्वेट संकट के दौरान लौटते मजदूरों पर अचानक कर्फ्यू की गोली मारो प्रवर्तन ताकि इजरायली अरब आबादी को डराया जाए। A18 सबरा और शतीला नरसंहार 16-18 सितंबर 1982 लेबनानी फलांजिस्ट IDF के घेराव फ्लेज और प्रवेश नियंत्रण के तहत कहान आयोग ने हिरल शैरन को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया। विरुद्ध शरणार्थी शिविर 800-3500 फिलिस्तीनी और लेबनानी नागरिक हत्या को सक्षम और सुविधाजनक बनाया ताकि शेष PLO समर्थकों को डराया जाए और लेबनन से लड़ाकों की पूर्ण निकासी बाध्य की जाए। बी आतंक के इरादे से लक्षित हत्याएं गैर न्यायिक हत्याएं। घटना तारीख अपराधी स्थान हताहत क्यों परिभाषा में फिट बैठती है। V1 लीलहैमर मामला 21 जुलाई 1973 मोसाद रेथ ऑफ कॉट टीम लीलहैमर नौवे निर्दोष मोरक्कोई वेटर अहमद बौचिकी की हत्या सार्वजनिक गलत पहचान हत्या ताकि विश्वभर में PLO नेटवर्क को डराया जाए राज्य आतंक अभियान की क्लासिक हस्ताक्षर। V2 सलाह शेहादे हत्या 22 जुलाई 2002 इजरायली वायुसेना एक टन बम गाजा सिटी घनी आबादी 15 मारे गए शेहादे की पत्नी 14 साल की बेटी 9 अन्य बच्चे सहित आवासीय ब्लॉक में जानबूझकर असमानुपातिक हथियार का प्रयोग ताकि हमास को कमजोर करते हुए जानबूझकर बड़े पैमाने पर नागरिक मौतें हों और गाजा आबादी को डराया जाए। V3 मोहम्मद देव हत्या जुलाई 2024 13 जुलाई 2024 इजरायली वायुसेना खान यूनिस विस्थापित व्यक्ति शिविर 90 प्लस नागरिक मारे गए पुष्टि हजारों विस्थापितों वाले तंबू शिविर पर हमला ताकि कमांडर को खत्म करते हुए बड़े पैमाने पर नागरिक मौतों को स्वीकार कर गाजा प्रतिरोध को तोड़ा जाए। बिफोर गाजा ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न स्नाइपर अभियान 30 मार्च 2018 दिसंबर 2019 IDF स्नाइपर यूनिट स्पष्ट नियमों के तहत गाजा - इजराइल बार 223 मारे गए 13,000 प्लस घायल 23 स्थायी रूप से विकलांग ज्यादातर निहत थे प्रदर्शनकारियों मेडिक और पत्रकारों सहित पर व्यवस्थित गोलीबारी ताकि गाजा आबादी को डराया जाए और सीमा विरोध रोका जाए। सी बसावटकर्ता हिंसा अक्सर राज्य दंडमुक्ति के साथ गैर राज्य अभिकर्ता। घटना तारीख अपराधी स्थान हताहत क्यों परिभाषा में फिट बैठती है। C1 मोहम्मद अबू खैर की हत्या 2 जुलाई 2014 यहूदी चर्मपंथी बसावटकर्ता पृष्ठभूमि पूर्वी यरूशलम 16 साल के किशोर को अगवा कर पीटा और जिंदा जलाया गया। 3 इजरायली किशोरों की हत्या के बाद यरूशलम के फिलिस्तीनी निवासियों को डराने के लिए प्रतिशोधी जिंदा जलाना। C2 दुमा आगजनी हमला 31 जुलाई 2015 अमीराम बेन उलियल और हिलटॉप यूथ नेटवर्क दुमागा वेस्ट बैंक 18 माह का अली दबाबशे जिंदा जल गया। दोनों माता पिता बाद में मरे सोते परिवार के घर पर बदला ग्रफिटी के साथ आगजनी ताकि फिलिस्तीनियों को डराया जाए और भूमि कब्जा तेज किया जाए प्राइस टैग सिद्धांत। C3 वादी 80 की यातना घटना 12 अक्टूबर 2023 सैन्य शैली की वर्दी वाले सशस्त्र बसावटकर्तावादी 80 जॉर्डन घाटी कई फिलिस्तीनी चरवाहों को घंटों यातना सिगरेट से जलाना पिटाई पेशाब यौन उत्पीड़न की कोशिश लंबी सेडिस्टिक यातना ताकि चरवाहा समुदायों को चराई भूमि छोड़ने के लिए डराया जाए। C4 अप्रैल 2024 बसावटकर्ता उग्रता बेंजामिन अचीमेयर हत्या के बाद 12-15 अप्रैल 2024 सैकड़ों सशस्त्र बसावटकर्ता 11 फिलिस्तीनी गांव अलमुगीर दुमा आदि 4 फिलिस्तीनी मारे गए दर्जनों घायल सैकड़ों घरकारी जलाई गई असंबंधित गांवों पर सामूहिक तन पोग्रोम ताकि पूरे जिलों को डराया जाए और समर्पण या भागने को बाध्य किया जाए। C5 हुवारा उग्रता पोग्रोम 26 फरवरी 2023 दर्जनों सशस्त्र बसावटकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से संगठित हुवारा नाबलुसिला वेस्ट बैंक 1 फिलिस्तीनी मारा गया 400 घायल गोलीबारी सहित व्यापक संपत्ति विनाश कारिंगर चलाए बसावटकर्ता मौतों के बाद गांव पर समन्वित बदला हमले स्पष्ट रूप से फिलिस्तीनी आबादी को डराने और दंडित करने के लिए प्राइस टैग चुनाव के बाद वृद्धि। C6 अफाफ अबू अलिया पर जैतून कटाई हमला अक्टूबर 2025 इजरायली बसावटकर्ता एकाधिक हमलावर अनिर्दिष्ट वेस्ट बैंक गांव जैतून बाग वन बेहोश पीटा गया अफाफ अबू अलिया अस्पताल में पत्रकार पर हमला फिलिस्तीन कटाई करने वालों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों पर हमला ताकि किसानों को डराया जाए आजीविका बाधित की जाए और कटाई सत्र में भूमि तक पहुँच रोकी जाए। C7 भेड़ यातना घटना नवंबर 2025 इजरायली बसावटकर्ता फिल्माया गया समूह फिलिस्तीनी स्वामित्व वाला बाड़ा वेस्ट बैंक जानवर यातना मारे गए बाड़े में भेड़ के बच्चे पशुओं पर क्रूरता प्रॉक्सी धमकी के रूप में ताकि चरवाहों को डराया जाए और चराई क्षेत्रों को आर्थिक रूप से छोड़ने को बाध्य किया जाए। C8 तुर्मुसैया सिंजिल एनसिनिया पर हमले कैदी रिहाई के बाद 17 जनवरी 2025 अल्ट्रानेशनलिस्ट बसावटकर्ता फाइटिंग फॉर लाइफ समूह तुर्मुसैया सिंजिल एनसिनिया रामल्ला जिला वेस्ट बैंक संपत्ति क्षति एकाधिक घर वाहन जलाए कोई मौत नहीं कैदी रिहाई पर फिलिस्तीनी उत्सव खराब करने के लिए समयबद्ध आगजनी और तोड़फोड़ भय पैदा करने और प्रभुत्व स्थापित करने का उद्देश्य। सी नाइनोमल खैर में औदा अल हथालिन की गोलीबारी जून 2025 पसाव पकड़ता यूनोन लेवी यू प्रतिबंधित मल खैर दक्षिण हेब्रोन हिल्स वेस्ट बैंक वन मारा गया। शांति कार्यकर्ता औदा अल हथालिन रिश्तेदार को IDF ने गिरफ्तार किया। कार्यकर्ता की लक्षित गोलीबारी के बाद पीड़ित परिवार की सैन्य गिरफ्तारियां ताकि बेदुन समुदाय को डराया जाए और भूमि कब्जा सुगम हो। निरंतर विस्थापन अभियान। सी 10 शादिया तरावा और परिवार पर हमला। मई 2025 इजरायली बसावटकर्ता का उनप्लेन या समान वेस्ट बैंक वन घायल। शादिया तरावा को गोली पैर खोया। किशोर बेटे पर हमला। खेत कार्य के दौरान पिता बेटे पर गोलीबारी और पिटाई ताकि किसानों को डराया जाए और कृषि भूमि तक पहुंच सीमित की जाए। सी 11 खिलेत अदाबे गांव पर छापा। 31 मई 2025 झुंडों वाले इजरायली बसावटकर्ता खिलेत अदाबे वेस्ट बैंक संपत्ति आजीविका क्षति जानवरों के साथ छापा। कोई सीधा हताहत नहीं। खेतों पर कब्जा करने के लिए चराई छापे ताकि ग्रामीण भागने को डराए जाएं। व्यवस्थित भूमि अतिक्रमण का हिस्सा। सी 12 बकरी के बच्चों की हत्या। 25 मई 2025 इजरायली बसावटकर्ता निर्दिष्ट वेस्ट बैंक चराई क्षेत्र जानवर मारे गए। बकरी के बच्चे पशुओं की हत्या ताकि चरवाहा परिवारों को आर्थिक रूप से डराया और पारंपरिक भूमि से विस्थापित किया जाए। सी 13 नेहालिन जैतून किसान हमला। 24 अक्टूबर 2025 IDF समर्थन के साथ इजरायली बसावटकर्ता नेहालिन बेथलेहम जिला वेस्ट बैंक वन गंभीर रूप से पीटा गया। 58 वर्षीय किसान IDF द्वारा जांच पिटाई के दौरान किसान की संयुक्त बसावटकर्ता सैन्य पिटाई ताकि भय पैदा हो और फिलिस्तीनी बाघों तक पहुँच सीमित हो। सी 14 बेतलेत औद्योगिक स्टेट और बेदुन हमला। नवंबर 2025 14 नवंबर से पहले हाल के दिन मुंह छिपाए बड़े बसावटकर्ता समूह बेतलेत औद्योगिक स्टेट और पास के बेदुन स्थल वेस्ट बैंक संपत्ति जलाई गई। ट्रकें मारती सैनिकों पर हमले। कोई फिलिस्तीन हताहत निर्दिष्ट नहीं। संगठित आगजनी और हमले ताकि शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में असीमित पहुँच का संदेश दिया जाए। नागरिकों और यहाँ तक कि राज्य बलों को डराया जाए। सी 15 हमीदा मस्जिद आगजनी। नवंबर 2025 14 नवंबर से पहले गुरुवार यहूदी बसावटकर्ता हमीदा मस्जिद क्षेत्र वेस्ट बैंक संपत्ति क्षतिग्रस्त। दीवारों फर्श पर जलने के निशान। कोई मौत नहीं। पूजा स्थल पर आगजनी और सैनिक को धमकी देने वाला ग्रफिटी। हम तुमसे नहीं डरते ताकि मुस्लिम समुदायों को डराया जाए और वैचारिक श्रेष्ठता स्थापित की जाए। सी 16 बुरका गांव आगजनी हमला। 15 जुलाई 2025 इजरायली बसावटकर्ता रात का छापा। बुरका रामला के पूर्व वेस्ट बैंक एकाधिक कारिंधर आग से नष्ट। कोई चोट नहीं। रात में वाहनों और संरचनाओं को जलाना ताकि निवासियों को डराया जाए और बढ़ती कटाई सत्र हिंसा में दैनिक जीवन बाधित हो। सी 17 मुगैर अगल देर विस्थापन अभियान। मई 2025 IDF उपस्थिति के साथ मुंह छिपाए बसावटकर्ता मुगैर अगल देर रामला के पूर्व वेस्ट बैंक। कई घायल। पत्थरबाजी गोलीबारी पूर्णगांव विस्थापन उत्पीड़न पत्थरबाजी और गोलीबारी जिसने दूसरा विस्थापन 1940 शरणार्थी बाध्य किया ताकि भूमि कब्जे के लिए गाँव खाली हो। सी 18 ताइबेह ईसाई कस्बे पर हमले। जुलाई 2025 17 जुलाई से पहले पिछले सप्ताह इजरायली बसावटकर्ता ताइबेह वेस्ट बैंक ईसाई कस्बा संपत्ति पर हमले। 5वीं सदी की गिरजाघर के पास आग। घर कोई हताहत निर्दिष्ट नहीं। ऐतिहासिक गिरजाघर के पास आग और घरों पर हमले ताकि अल्पसंख्यक ईसाई फिलिस्तीनियों को डराया जाए और बसावटकर्ता नियंत्रण बढ़ाया जाए। सी 19 सिंजिल हमले। हत्याओं के बाद जुलाई 2025 17 जुलाई से पहले शुक्रवार इजरायली बसावटकर्ता सिंजिल वेस्ट बैंक हमलों से चोटी। 6 गिरफ्तार। रहा फिलिस्तीनी हमलों के बाद बदला पिटाई लेकिन व्यापक समुदाय को दंडमुक्ति के साथ डराने के लिए इस्तेमाल। सी 20 बीत सेलिम संचालित किशोर हमला और पिता गोलीबारी। जून 2025 इजरायली बसावटकर्ता निर्दिष्ट वेस्ट बैंक क्षेत्र वन गोली। पिता ने पैर खोया। किशोर पर हमला। सामान्य गतिविधियों के दौरान परिवार लक्षित हिंसा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भय पैदा हो और गतिशीलता सीमित हो। ये 32 घटनाएं। 18 नरसंहार 4 लक्षित हत्याएं 20 बसावटकर्ता हमले। UNG संकल्प 4960 के हर तत्व को स्पष्ट रूप से पूरा करती हैं जब परिभाषा को शाब्दिक रूप से और राज्य या राज्य संरक्षित अभिकर्ताओं को सामान्य राजनीतिक छूट के बिना लागू किया जाता है। इनसे सामूहिक रूप से हजारों नागरिक मौतें हुई और इनका उद्देश्य जैसा अपराधियों कमांडरों या बाद की इजरायली जांचों द्वारा स्वीकार किया गया आतंक पैदा करना आबादी को डराना या राजनीतिक क्षेत्रीय परिणाम बाध्य करना था।